बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती भव्य मुख पर चंद्रमा की चमकती ज्योति दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ विश्व में थी पाप की जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई एक तार में बंध के सारे बोलते बनियों से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओ
ओम शांति, ओम शांति। आज सतगुरुवार है और हम सभी सतगुरु बाबा के महावाक्य सुनेंगे, तो सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। हम सभी सतगुरु के पोतरे हैं और ब्रह्मा के मुख संतान हैं। हम सब ने एक नया जन्म लिया है, अभी हमारा पुराना जन्म खत्म, हम नए जन्म में हैं। ब्राह्मण जन्म ये नया जन्म है, पहले तो शूद्र जन्म में थे, अब ब्राह्मण जन्म में आए हैं। तो ब्राह्मण जीवन में अति इंद्रिय सुख हमें अनुभव होना चाहिए, बचपन का अनुभव होना चाहिए। किसी ने कहा कि छोटा बच्चा होता है ना, वो सारे दिन में 300 बार मुस्कुराता है, 300 बार मुस्कुराता है। किसी ने कुछ कहा इसलिए नहीं, अपने आप मुस्कुराता है, नींद में भी मुस्कुराता है। किसी ने प्यार से बात की, भले वो शायद ना भी समझे लेकिन मुस्कुराता है। तो एक छोटा बच्चा भी जैसे अति इंद्रिय सुख का अनुभव करता है, उसको और कुछ पता नहीं है लेकिन वो सुख जरूर अनुभव करता है। तो हम भी बाबा के बच्चे बने हैं, छोटे बच्चे हैं। इसलिए कई कहते ना, मैं तो एक महीने का बच्चा हूँ, मैं एक साल का बच्चा हूँ। हम सब बच्चे हैं और बाबा कहते हैं बच्चा समझा तो बच जाएंगे माया से। तो सदा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है, कुछ भी हो जाए अपनी खुशी खत्म नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ कितना भी कहे, लेकिन हम कौन है बाबा कहते ये भूलो नहीं। तो आज की बाबा की मुरली हमें यही सबक पढ़ाती है कि अपनी खुशी को कभी खत्म नहीं करना, सदा अति इंद्रिय सुख में रहना, कुछ भी हो जाए। तो वो कब होगा, जब हम अशरीरी अवस्था का अनुभव कर सकेंगे। जैसे ही कुछ हुआ न्यारे हो जाओ, अशरीरी हो जाओ, तो वो अंदर में दुख आएगा नहीं, चुभेगा नहीं। तो आज की मुरली इसी पर है, सुनते हैं सतगुरु के महावाक्य। आज 18/6/2026 है। मीठे बच्चे, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए क्या करो? अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं, हम किसके बच्चे हैं। छोटे बच्चे को ये भी पता नहीं होता मैं किसका बच्चा हूँ, बस मुस्कुराता है। हमें तो पता है ना, हम बोल उस रूप से तो नहीं है, हमें पता है हम किसके बच्चे हैं। तो सदा इस स्मृति में रहो हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा, सुख गुम हो जाएगा। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। प्रश्न है, बाप के मिलन की स्थायी खुशी, हम किसके बच्चे हैं, किससे हम मिल रहे हैं, हमें कौन पढ़ा रहा है, हमें कौन लायक बना रहा है। बाबा कहते हैं बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर है, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं। नया जन्म लिया है ना, तो पुराना जन्म तो भूल जाना चाहिए। अगर पुराना जन्म भी याद रहा तो नए जन्म का भी सुख नहीं ले सकेंगे। तो जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहते हैं, एक बाप की याद में रहने की मेहनत करते हैं, आज बाबा मेहनत कहते हैं क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं ना, तो मेहनत करनी पड़ती है कि हम एक बाप के बच्चे हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते हैं, उन्हें ही स्थाई खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है, इसका मतलब पुराना जन्म याद है ना, देहधारी की याद मना पुराना जन्म याद, अगर देहधारी की याद है तो बाबा सावधान करते हैं बहुत रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं है, पर देहधारी की याद आई तो जरूर वो खींचेगी और फिर रोना पड़ेगा, मोह सताएगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं है। गीत कौन सा होगा, बचपन का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये भूलो मत। एक बेहद का बाप नहीं है, दो दो बेहद के बाप है। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये भूलो मत। ये भूले, अगर भूले तो अपने को रुला देंगे, छी छी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी, क्योंकि देहधारी याद आएंगे जो पूर्व जन्म के, हमने तो नया जन्म लिया है, तो बाबा कहते हैं छी छी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी तो फिर रोना पड़ेगा। बाप की याद रहने से अति इंद्रिय सुख भासता है, वो सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा। अति इंद्रिय सुख नहीं रहेगा अगर हम भूल गए हम किसके बच्चे हैं। हरदम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे बने हैं, सतगुरु के पोतरे हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं ये भूलना नहीं चाहिए हम किसके बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे, भूले तो रुला देंगे अपने को। सब भगवान के बच्चे हैं ये तो सब कहते हैं, दुनिया भी कहती है हम सब भगवान के बच्चे हैं, लेकिन वो नशा कहाँ है, केवल बस कहने मात्र कह देते हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम भगवान के बच्चे हैं ये तो सब कहते हैं, हे बाबा हे परम पिता परमात्मा रक्षा करो, हाँ ये भी कहते हैं, परंतु बाप से रक्षा कब होती है ये किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है। संन्यास तो कर लिया लेकिन मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है ये उनको भी पता नहीं, क्योंकि भगवान को फिर कण कण में कह दिया है। अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो, मोस्ट बिलविड बाप है। कैसा है हमारा बाप, मोस्ट बिलविड बाप है, उससे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं। सोचो कितनी भी कोई प्यारी वस्तु हो लेकिन बाबा से प्यारी वस्तु कोई होती नहीं। ऐसे बाप को न जानना क्या है, कितनी बड़ी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं ये भी, ये वो कौन है जानते ही नहीं है, तो कितनी बड़ी, कितने भूले हुए हैं, तो अति इंद्रिय सुख का उनको अनुभव होगा। शिव जयंती क्यों मनाते हैं, वो कौन है ये भी कोई नहीं जानते हैं। तो बाप कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए थे, है ना, बाबा का बनने से पहले हम कितने बेसमझ बन गए थे। देखो माया रावण ने तुमको क्या बना दिया, क्या बना दिया माया रावण ने, इतने बेसमझ बन गए थे। बाप कहते हैं माया रावण ने तुमको क्या बना दिया है, अभी तुम बच्चे जानते हो ये हमारी जन्म भूमि है, भारत हमारी जन्म भूमि है। हमारे डबल विदेशी भी यही कहते हैं, भारत से इतना प्यार है। तभी तो देखो हर साल आते हैं मधुबन, चाहे कितनी भी अभी टिकट बड़ी हो गई है, बहुत महंगी हो गई है टिकट, लेकिन फिर भी मधुबन 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 करते रहते हैं। तो भारत से प्यार है, मधुबन से प्यार है, और क्या कहते हैं, हम आदि भारतवासी है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो ये हमारी जन्मभूमि है, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। शिव बाबा को भी नशा है, ये मेरी जन्मभूमि है, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। वो फिर कह देते हैं 40000 वर्ष के बाद ये कलयुग पूरा होगा, तब आएगा। चित्र भी दिखाया जाता है त्रिमूर्ति का, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है ना, दिल्ली में है त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है, परंतु तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई नहीं जानते। नहीं जानते ब्रह्मा क्या करके गए, विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। बाप है रचयिता, उनकी ये कितनी बड़ी रचना है, सारी दुनिया तो उनकी रचना है ना, कितना बेहद का नाटक है, इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले जब भारत सतयुग था, भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण को कहा जाता है, राम सीता को भी भगवान राम भगवती सीता कहते हैं। अब ये भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए, कहाँ से आए, राज्य करके गए हैं, आए कहाँ से, उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते, सिर्फ गाते रहते हैं हे भगवान दुख हरता सुख करता। परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता, ये दुख हरता सुख करता कैसे है, भगवान कैसे है दुख हरता सुख करता, ये बाबा कहते नहीं जानते। अच्छा कौन सा सुख सबको दिया, दुख हरता सुख करता है तो कौन सा सुख सबको दिया, और कब सबका दुख हरा, कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे अभी ये राजयोग सीख रहे हो, भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण बनने के लिए। क्यों राजयोग सीख रहे हो, भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण बनने के लिए। जानते हैं भगवती सीता भगवान राम भी बनने का है, वो भी बनते हैं ना, केवल भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण नहीं बनते हैं, भगवान श्री राम भगवती श्री सीता भी बनते हैं। 8 जन्म सतयुग में पूरा करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। 21 जन्मों के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो, तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। चढ़ाओ नशा, हम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, यहाँ भी किसको, बाबा कहते हैं पता ही नहीं है, स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है। हाँ किसी को भी पता नहीं, वो तो समझते शरीर छोड़ा स्वर्ग में गया, ऊपर कहीं गया, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अच्छा फिर बाबा प्रश्न करते, अच्छा क्या क्रिश्चियन बोधी सब हेवन में जाएंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे क्रिश्चियन बोधी, वो बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो फिर वो स्वर्ग में कैसे आ सकते हैं, जा ही नहीं सकते हैं। सत्य त्रेता स्वर्ग है, वहां तो क्रिश्चियन बोधी है ही नहीं, वहां तो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, तो वो स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है ये भी किसको पता नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं ज्योति जो समाया, कोई फिर कहते हैं निर्वाण धाम गया। निर्वाण भी तो लोक है ना, महात्मा बुद्ध के लिए कहेंगे पार निर्वाण गया, तो अभी निर्वाण धाम भी तो कोई लोक है ना, अब वो तो निवास स्थान है निर्वाण धाम। ज्योति ज्योत में लीन होने की तो बात ही नहीं है, ज्योति में मिल जाए तो फिर तो आत्मा ही खत्म हो जाए, खेल ही खत्म हो जाता है। मिल गई ज्योति ज्योत में, बुदबुदा सागर में समा गया तो खेल ही खत्म, उसका खेल ही खत्म हो जाता है। इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, ये बहुत बड़ा सत्य है कि कोई भी आत्मा इस बेहद नाटक से छूट नहीं सकती, भले चाहे शुरू में आए चाहे अंत में आए, छूट नहीं सकती। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। गीत का अर्थ तो कोई समझते नहीं है, बचपन के दिन भुला न देना, न जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं, न आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। तो बाप कहते हैं तुम्हारी शक्ल तो मनुष्य की है, जो इन देवताओं की भी थी, देवताओं की भी शक्ल तो हम लोगों के जैसे ही थी। सतयुग आदि में देवताएं थे, उनका 2500 वर्ष राज्य चला, बाकी 2500 वर्ष की बात है। उस राज्य को तो कोई जानता ही नहीं है, सतयुग त्रेता के राज्य को, बाकी 2500 वर्ष की बात है जिसमें और सब धर्म आते हैं। 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष कल्प वृक्ष की आयु है, परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। तुम अगर समझाओ तो बाबा कहते तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। हाँ आएंगे भी वही, ऐसे भी सब नहीं आएंगे समझने के लिए, पर कौन आएंगे समझने के लिए, जिन्होंने कल्प पहले आकर समझा होगा। पहले तो ये समझाना है, अभी कई बार बाबा अलग अलग बातें कहते हैं क्या क्या समझाना है, तो पहले तो ये समझाना है कि एक है हद का संन्यास, जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं। पहले पहले वो सतो प्रधान थे, फिर अब तमो प्रधान बने हैं, तो जंगलों से लौट कर आए हैं, बड़े बड़े महल बनाए हैं। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है। इनकी भी एक शाखा बन गई इस कल्प वृक्ष में, सृष्टि को थमाने के लिए उनकी पवित्रता से। तो इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है, भारत की सेवा की है, अपने पवित्रता के बल से भारत की सेवा की है। ये सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। ये भी ड्रामा बना हुआ है, ये भी बना हुआ है ड्रामा, पतित बनना भी ड्रामा में बना हुआ है, सन्यास मार्ग भी ड्रामा में बना हुआ है। उन्होंने पहले पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया है। इन देवताओं का जब राज्य था तो भारत कितना साहूकार था, इनों के इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरातों के महल थे। फिर बाबा ले जाते स्वर्ग में कि इन देवताओं के कितने बड़े बड़े हीरे जवाहरातों के महल थे, वो सब कहाँ गए, कहाँ गए, सब नीचे चले गए, और नीचे चले गए तो टूट फूट गए होंगे, ये थोड़ी कोई बचे होंगे, सब कहाँ गए, सब नीचे चले गए। लंका और द्वारका के लिए भी कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई, सोने की लंका जल गई, पर जलने के बाद भी तो नीचे चली गई ना, वो टापू ही था, तो द्वारका भी नीचे चली गई। स समुद्र के नीचे चली गई, अभी तो है नहीं। सोने के महल आदि सब थे ना, जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो वहां क्या नहीं होगा। द्वापर में हीरे जवाहरात मंदिरों में लगा सकते हैं तो सत्युग त्रेता में क्या नहीं होगा। कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बाबा फिर से आया हुआ है। कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, बच्चे बाप को याद करो, याद एक को ही करना है जिससे ही विकर्म विनाश होंगे। परंतु वो भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं एक को याद करो उससे ही विकर्म विनाश होंगे, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं और क्या करते हैं, बच्चे भूल जाते हैं और देहधारी की याद आ जाती है उनको। देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं, बहुत बड़ी बात है, देहधारी की याद से कुछ भी फायदा नहीं। बाप कहते हैं माँ एकम याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना, एक बाप की याद से ही कमाई है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर क्या होगा। इस समय अपना बचपन, जो बाबा के बच्चे बने हम, उस बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है। इतना बड़ा विश्व का मालिक हमको बनाने वाला हमको मिला और हमें विश्व का मालिक बना रहा है, तो बाबा कहते हैं रोने की क्या दरकार है। तुम बाप को भूलते हो तभी माया थप्पड़ लगाती है। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को तो बैठ अमर कथा नहीं सुनाई होगी, जरूर बहुत होंगे। जो भी मनुष्य मात्र है सबको बाप समझाते हैं, अमरनाथ बाप सबको समझाते हैं, केवल एक को तो नहीं समझाया, तो सब मनुष्य मात्र को बाप समझाते हैं। और क्या बात कि अब पतित मत बनो, पतित मत बनो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। वहां स्वर्ग में कोई विकार नहीं होते, अगर वहां भी विकार होते तो क्या होता, अगर वहां भी विकार होते तो फिर स्वर्ग और नरक में फर्क क्या हुआ, कोई फर्क नहीं हुआ। वहां भी विकार यहां भी विकार तो क्या फर्क हुआ। देवी देवताओं की तो महिमा गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, कितनी भारी महिमा है। भगवान आकर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिवाय भगवान के तो कोई भगवान भगवती बना भी न सके, भगवान तो एक ही है। फिर वो आकर के भगवान भगवती बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं भगवान तो एक ही है, एक ही गाया जाता है भगवान। भगवान भगवती की फिर राजधानी भी बताते हैं, ऐसे भगवान एक है। लेकिन भगवान ने जिनको ऊंचा इतना बनाया उनको भी भगवान भगवती कहते हैं, उनकी राजधानी है। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी तो वही होगी, सब जैसा राजा रानी वैसी प्रजा। परंतु भगवान भगवती नहीं कहा जाता है, चाहे भले भगवान ने उनको बनाया लेकिन भगवान भगवती नहीं फिर भी कहेंगे, भले कहते हैं लेकिन बाबा कहते हैं भगवान भगवती नहीं कहा जाता है। चलो लक्ष्मी नारायण को कह दिया, अब प्रजा को थोड़ी कहेंगे। इसीलिए एक ही नाम सबको देते हैं, क्या इसलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो लक्ष्मी नारायण भी उस धर्म में आ गए, तो प्रजा भी आ गई, तो दास दासी सब आ गए उसी एक धर्म में। आदि सनातन देवी देवता धर्म ये किसको भी पता नहीं है। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था, पहले थोड़ी पता था कुछ भी, शिव बाबा ने सब बताया। तो इनकी यानी ब्रह्मा की आत्मा को भी बाप ही समझाते हैं, एक बाप की एक दादा की, दो आत्माएं है ना, शिव बाबा की आत्मा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा। हाँ, ब्रह्मा के तन में प्रवेश है तो दो आत्माएं है ना, एक आत्मा 84 जन्म लेने वाली। कौन सी आत्मा 84 जन्म लेने वाली? ब्रह्मा की आत्मा। और दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित, शिव बाबा की आत्मा पुनर्जन्म रहित, दोनों एक ही तन में। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाते हैं। बाप तुमको समझाते हैं, अब शिव बाबा क्या समझाते हैं, बच्चे मैंने इनमें प्रवेश किया है, ये 84 जन्म भोग आए हैं, अब इनको बहुत जन्मों का, अब इनके बहुत जन्मों का ये अंतिम जन्म है, अब मैं निराकार हूँ, तो कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखलाऊं? प्रेरणा से तो कुछ हो न सके, श्री कृष्ण भगवान वाच तो हो न सके, वो कैसे आ सकता है? श्री कृष्ण अभी कैसे आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि वो तो है ही सतयुग का प्रिंस, 16 कला संपूर्ण, वो अभी कैसे आ सकता है? फिर त्रेता होता है 16 कला सतयुग में, फिर त्रेता होता है तो उसमें 14 कला संपूर्ण, फिर द्वापर में श्री कृष्ण को क्यों ले गए? कहाँ वो 16 कला और कहाँ श्री राम 14 कला और श्री कृष्ण 16 कला को फिर द्वापर में ले गए हैं? क्यों ले गए हैं? उनको तो पहले आना चाहिए ना। तो बाप समझाते हैं, पहले बाप को याद करो, फिर डिटेल की बाबा बताते हैं, फिर बाबा कहते हैं बाप को याद करो, नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार देगी। कल भी बाबा ने कितनी बार कहा, माया थप्पड़ मार के मुंह फेर देगी, नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार देगी। छुई मुई का भी एक झाड़ होता है, देखा है छुई मुई का झाड़? किसने देखा है? अच्छा, सबने देखा है। छोटा सा झाड़ होता है, कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, उसके पत्ते भी ऐसे छोटे छोटे होते हैं, उसमें पत्ते जो होते हैं ना, एक ही पत्ते में कितने पत्ते होते हैं, और इतना सेंसिटिव होता है, जरा सा अभी छुआ भी नहीं है, बिल्कुल केवल नजदीक ही ले गए उंगली को, तुरंत उसकी जो पत्ते हैं वो ऐसे मुरझा जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं छुई मुई का एक झाड़ होता है, हाथ लगाओ तो मुरझा जाए, तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है। अब हम भी क्या बन जाते हैं, छुई मुई की तरह, तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है, बाप को याद नहीं किया और खलास मुरझा गए। गीत में भी सुना, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बाप को भूले तो क्या होगा, बाप को भूले तो कहां न कहां चोट लग जाएगी, माया की चोट लग जाएगी। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, याद दिलाते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, ये शरीर तो विष से पैदा हुआ है, ये शरीर तो पुराना शरीर है, ये तो विष से पैदा हुआ है। वो इनके लौकिक माँ बाप है, हाँ वो इनके लौकिक माँ बाप है, ये तो है पारलौकिक बाप, और इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता है। वो हद का था फिर बेहद का बन गया। अब ये बाबा किसके लिए कहते हैं, निर्मल शांता दादी के लिए। निर्मल शांता दादी जिसको हम परदादी कहते थे, तो वो बाबा की लौकिक बेटी थी, तो वो बाबा के सामने बैठी थी, तो देखो बाबा क्या कहते हैं। हाँ, ये तो है पारलौकिक बाप, इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता है। अब ये हद का भी था, ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज, दादी निर्मल शांता का लौकिक बाप भी था, फिर ये बेहद का बाप बन गया। अभी देखो ये लौकिक बच्ची निर्मल शांता बैठी है, हमेशा दादी निर्मल शांता को ये नशा रहता था। हाँ, थ्री इन वन सदा निर्मल शांता दादी कहती थी, थ्री इन वन, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और लौकिक पिता, सब तीनों एक में, तो थ्री इन वन। उसके ऊपर किसी ने लिखत भी बनाई है, वो किताब भी बनाई है, थ्री इन वन। अभी देखो ये लौकिक बच्ची बैठी है निर्मल शांता, ये लौकिक भी है, अलौकिक भी है और पारलौकिक भी है। बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन है नहीं, ब्रह्मा बाबा के लिए चलो कहेंगे ये बच्ची लौकिक भी है, अलौकिक भी है, पारलौकिक भी है, पर शिव बाबा के तो कोई लौकिक में बच्चे भी नहीं, लौकिक तो है नहीं ना, और भाई बहन भी नहीं है लौकिक में। बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन है नहीं, न लौकिक न अलौकिक न पारलौकिक, कितना फर्क है शिव बाबा की आत्मा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा में। एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है, ऐसे बाप से संबंध जोड़ना है, टाइम लगता है, शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है, कई 50 वर्ष से रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद भी नहीं करते, ऐसे भी है 50 साल शिव बाबा के बने हैं, तो अभी उस समय तो 50 साल ही हुए होंगे, तो 50 साल से शिव बाबा को याद, 50 साल से शिव बाबा के बने हैं तो भी सारा दिन बाबा को याद ही नहीं करते, ऐसे भी हैं। और सबको भूल एक को याद करना बहुत बहुत मेहनत है, कोई 1% याद करते हैं, कोई 2% याद करते हैं, कोई 0.5% भी मुश्किल याद करते हैं, ये बड़ी भारी मंजिल है। तो बाप समझाते हैं बचपन को नहीं भूलना, बाबा फिर से याद दिलाते हैं इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन के बचपन को नहीं भूलना। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तुम जानते हो हम जीते जी मर कर बाप के आकर के बने हैं। किस लिए बने हैं? जीते जी मर कर बाप के आकर, किस आकर बने, किसके लिए? नई दुनिया में जाने के लिए। क्यों बने हैं? नई दुनिया में जाने के लिए। तो तुम्हें स्थाई खुशी रहनी चाहिए। ओ, हम डबल सिरताज बनेंगे, मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि सतयुग में इन देवताओं को 16 कला संपूर्ण और फिर 14 कला संपूर्ण त्रेता में क्यों कहते हैं, कुछ भी नहीं जानते किस आधार पर 16 कला 14 कला बने इस समय के पुरुषार्थ अनुसार, कुछ भी नहीं जानते। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे, ये हठ योग तीर्थ यात्राएं आदि सब फिर भी होंगे, कुछ भी नया नहीं है, पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है, फिर भी होंगे। परंतु इससे क्या होगा? अच्छा, क्या हेवन हो जाएगा? क्या हेवन में चले जाएंगे इससे? जो भी भक्ति मार्ग में किया, क्या हेवन में चले जाएंगे? नहीं, बहुत रिद्धि सिद्धि से भी काम करते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, हजारों मनुष्य उनके पिछारी पड़ते रहते हैं रिद्धि सिद्धि वालों के, रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियां आदि चीजें निकालते हैं, है तो सारी हाथ की सफाई ना, कोई छू मंत्र से कोई ऐसी चीज थोड़ी आ जाएगी। हाँ, किसी ने वो ये सत्य साई बाबा का दिखाते ना, घड़ी निकाली या हार निकाला, तो किसी ने इस पर बहुत बड़ा कमेंट किया था, जरूर कहीं से चुराई होगी, हाँ किसी दुकान से चुराई होगी, क्योंकि इसमें लिखा होगा HMT घड़ी, ये घड़ी, वो घड़ी, तो किसी दुकान की होगी ना, तो कहीं से चुराई होगी। तो परंतु बाबा सब समझते ये इसमें ये पहुंची हुई आत्माएं रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियां आदि चीजें निकालते हैं। अब ये थोड़ी समझते हैं ये अल्पकाल के लिए सब है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ बाबा की ज्ञान में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी किताब होती है। जादूगर कैसे करते हैं, तो सारी हाथ की सफाई ना, पर उसके लिए किताब होती है कैसे ये हाथ की सफाई कर सकते जो किसी को पता भी न चले। ये रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी किताब होती है। कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से स्वर्ग मिलता है। क्या मिलता है? स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ रिद्धि सिद्धि नहीं है, कोई जादू मंत्र नहीं है, यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, यहाँ सब है विद्धि से सिद्धि। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो नहीं रहेगा। तो बाप समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर के साथ पाठ बजाया। अगर 84 लाख का हिसाब बताएं, अगर 84 लाख का हिसाब बताएं, तो बाबा कहते 12 मास लग जाए। 84 लाख, इतने कीट, इतने पक्षी, इतने जीव, इतने जंतु, इतने जानवर, फिर पता नहीं क्या क्या बताते हैं, कोई 84 लाख का हिसाब, तो 12 मास लग जाए। अब ये तो हो ही नहीं सकता, 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना तो बिल्कुल सहज है, केवल 84 जन्म बताना तो बिल्कुल सहज है। तुम 84 का चक्र लगाते रहते हो, सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं है। हाँ जब सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं, सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ फिर चंद्रवंशी बनते हैं। अभी तुम जानते हो हम है कौन से वंशी, ब्राह्मण वंशी, फिर क्या बनेंगे, देवता वंशी बनना है, इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते वैश्यवंशी शूद्रवंशी बनेंगे। अभी अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है, आ गई है ना सबको अपने 84 जन्मों की स्मृति। ये चक्र भी याद करना पड़े, बाप को याद करने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे, पाप कट जाएंगे, चक्र को जानने से चक्रवर्ती बन जाएंगे, बाप को याद करने से एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे, चक्र को याद करने से चक्रवर्ती बन जाएंगे। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, सोचो तो जरा कैसी कब्रिस्तान बननी है ये पुरानी दुनिया, कुछ भी नहीं रहेगा। गीता में अर्जुन को भगवान ने दिखाया ना, दिखाते हैं साक्षात्कार कराया कि देखो ये सब मरे पड़े हैं, सब जैसे सारे कौरव सेना सारे मरी पड़ी हैं, सब मर जाने हैं। तो उसको बड़ा दुख हुआ, मेरे कारण ये सब मरेंगे। फिर उसको समझाया नहीं इनका तो मौत निश्चित है, इसीलिए दुख मत करो, आत्मा तो मरती नहीं है। तो इसलिए देखो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, कुछ भी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार, राम की आत्माएं भी जाएंगी तो रावण की जो सेना है वो भी जाएगी, क्योंकि रावण की सेना का तो बहुत बड़ा परिवार है, राम की सेना तो छोटी है। तो राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार, राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में, अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है, सारी दुनिया तो रावण का ही परिवार है ना, कितना बड़ा परिवार है रावण का। बच्चे जानते हैं कि ये राजधानी स्थापन हो रही है, हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट, राजधानी माना पुरुषार्थ फर्स्ट। बाप पुरुषार्थ कराते हैं, बच्चे मुझे याद करो, जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? देखो कितना प्यार से बाबा कहते, क्या उनको याद नहीं करेंगे जिनसे अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग का मालिक बनो, बचपन को भूलो मत, ये ब्राह्मण जीवन को भूलो मत। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या होगा? सार पहला, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना। इसलिए क्या करो, छुई मुई नहीं बनना है, इसलिए ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाओ नहीं। ईश्वरीय बचपन है, इसको भूलकर मुरझाना नहीं है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। दूसरा, एक बाप की याद में ही कमाई है और किसी की भी याद में कमाई नहीं है, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। किसको रोना तो नहीं आता है? माताएं जो कभी अभी ये 6 महीने में रोई नहीं है वो हाथ उठाए। माताएं, भाई तो नहीं रोए होंगे पर माताएं जो रोई बिल्कुल नहीं है वो हाथ उठाए। थोड़ी सी है, बाकी रो सब रोई है क्या? मैंने कहा जो रोई नहीं है वो हाथ उठाए। माताएं तो बाकी रोई है सब। देखो बाबा कहते रोना नहीं है, हा? तो अभी आज से रोना बंद, कुछ भी हो जाए रोना नहीं है, दुख के आंसू कभी नहीं निकालने। भाइयों को तो नहीं आते होंगे ना, कोई इस 6 मास में भाई कोई रोए हैं क्या? भाई कोई ना, देखो एक हाथ उठा रहा है, क्या रोए हैं? हाँ रोए हैं। अच्छा देखो, बाबा कहते रोना नहीं है। तो एक बाप की याद में कमाई है, इसीलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। बच्चों की एक कंप्लेंट रहती है, बाबा को कंप्लेन करते हैं बच्चे, क्या कि संबंधी नहीं सुनते हैं। हम उनको ज्ञान सुनाते हैं वो सुनते नहीं हैं, या फिर बाबा को कहते हैं संग अच्छा नहीं है, हम जहाँ रहते हैं वो संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते हैं। मित्र संबंधी सुनते नहीं है, जहाँ रहते वहाँ संग अच्छा नहीं है तो शक्तिशाली नहीं बन सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बनो। इतना ज्ञान बाबा ने दिया है तो श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन, अपनी स्थिति को अचल बनाओ, साक्षी होकर हर एक का पाठ देखो। कुछ भी हो जाए साक्षी होकर हर एक का पाठ देखो और अपने सतोगुणी पाठ में स्थित रहो। दूसरों का पाठ साक्षी होकर देखो और अपने सतोगुणी पाठ में स्थित रहो। सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा के संग का रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन, कर्म योगी वो है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपरांत स्थिति में रहे। पक्षी कैसे डाली पर बैठता है और अपना गीत गुनगुनाता रहता है, भले डाली हिलती भी हो। कर्म योगी वो है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपरांत स्थिति में रहे। यह व्यक्ति इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके लिए क्या करना है, जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, विशेष अलग ही स्वभाव होता है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं। कहते हैं चाहती नहीं हूं लेकिन मेरी ये नेचर है, ये मेरा स्वभाव है। ऐसे आप बच्चों की सरल नेचर हो जो सबको अनुभव हो कि ये सहज योगी स्वतः योगी है। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, ये बातें खत्म। है ही सदा सहयोगी अर्थात योगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से सभी सब्जेक्ट्स में परफेक्ट हो जाएंगे। क्या नेचर बनाओ, क्या नेचुरल बनाओ, सदा सहयोगी अर्थात योगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति। आज हम सबके लिए बहुत ही प्यारा दिवस है, सतगुरुवार। प्यारे बाबा सतगुरु की आशीर्वाद लेने के लिए हम सब बच्चे अमृत वेले से ही बाबा से मीठी मीठी रूहान करते हैं। सतगुरु का वरदान हम सबको प्राप्त होता ही रहता है और आज के दिन वरदानों की वर्षा, बाबा की छत्र छाया, बाबा का प्यार हम सब बच्चों को प्राप्त होता ही है। तो आज हम सब मिल करके वतन में बाबा के पास जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। जो भी भाई बहने आज बहुत प्यार से बाबा के पास वतन में जाएंगे, वो अपना एक हाथ खड़ा करके बाबा को बता दें कि बाबा हम आपके पास आ रहे हैं। बाबा देखेंगे कितने प्यार से आ रहे हैं और बाबा अपने बच्चों का सदा ही स्वागत करते हैं। बच्चे आते थे तो बाबा बहुत खुश होते थे, बहुत प्यार करते थे और बाबा कहते थे मेरे लाडले बच्चे आए हैं। तो आज उसी लाड प्यार बहुत ही स्नेह से हम सब वतन में बाबा के पास जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। जिसको कुछ भी संकल्प है वो सब कुछ बाबा के सामने रख के बिल्कुल हल्के हो जाए। कोई भी संकल्प नहीं करना है, बाबा बैठा है, बाबा जाने, बाबा का कार्य है, हम बाबा के बच्चे, बाबा के प्यार में खो जाएं, ऐसा अनुभव सबको करना है। हम सब मिलकर के बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे, और उसके बाद पांच लाइन में अमृत होगा। एक लाइन होगी जो वो स्टैंड है वहां पर भाइयों की, दूसरी लाइन होगी बीच में, भट्टी के भाई हाथ खड़ा करें, भट्टी के भाई यहाँ बीच में आएंगे अमृत पीने के लिए, और भट्टी की टीचर्स बहने हाथ खड़ा करें, भट्टी की टीचर्स बहने, और उसके बाद माताएं भट्टी की यहाँ इस कैमरा स्टैंड के पास आएंगे अमृत पीने के लिए, और बाकी दो लाइनें होगी अन्य बहनों की अमृत पीने के लिए। तभी हम सब चलते हैं बाबा के पास और बाबा को सब मिलकर के भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति। अच्छा, मधुबन की समर्पित भाई बहने जो जिन्हें हर साल कपड़े के लिए कागज दिया जाता है, पेपर दिया जाता है, उनको सबके पास सूचना तो पहले से पहुंच चुकी है, लेकिन फिर से बता रहे हैं, मधुबन ज्ञान सरोवर और हॉस्पिटल तथा शांतिवन के वह पुराने, क्योंकि जो बहुत पुराने हैं समर्पित भाई बहने हैं जिन्हें कपड़े के लिए पेपर दिया जाता, शीट दिया जाती है, तो वह आज प्रातः 10:30 बजे तक शांतिवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचेंगे और वहां पर बैठेंगे और अपने कपड़े आदि को भी देखेंगे, और 11:30 बजे मुन्नी बहन आएगी, सबसे मिलेगी, और उसके बाद ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके आएंगे, और जिनके पास अपना गाड़ी का प्रबंध है वो तो उसमें ही जाएंगे, और बाकी जो है 9 बजे से ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट मिलता है उसमें जा सकते हैं। ओम शांति।
2-3 दिन पहले जिन्होंने नहीं लिया वो भी चलेगा,
जिन्होंने नहीं लिया। 2-3 दिन पहले ऐसे भी भाई बहने थे जिन्हें जो किसी कारण से नीचे कपड़ा लेने के लिए नहीं गए थे, तो वह भी आज कपड़ा लेने के लिए नीचे जाएंगे, 10:30 के अंदर उनको पहुंचना है, क्योंकि बाबा के घर में बाबा और दादियां सबकी शुरू से लेकर के पालना करती आई हैं। सभी समर्पित भाई बहनों के बाबा तो पालना करते हैं, दादियां भी कर रही हैं, तो सभी को यहां से पूरे वर्ष का वस्त्र आदि मिलता है, तो इसलिए समर्पित भाई बहने जिन्होंने पहले 2-3 दिन पहले कपड़ा नहीं लिया है वह भी, और तथा वह पुराने समर्पित भाई बहने जिन्हें कपड़े के लिए पेपर दिया जाता है, प्रातः 10:30 बजे तक शांतिवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचेंगे, वहां पर उन्हें बाबा के घर से कपड़ा मिलेगा, ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके आएंगे। अच्छा, ओम शांति।
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योति
अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। या प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते
जयंती। आज सतगुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ, जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते ही क्या देखती हूं कि बाबा बहुत दूर से आते हुए दिखाई दे, और जैसे बाबा नजदीक आए तो मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा, बाबा आज आप कहाँ चक्कर लगा के आए हैं? बाबा ने कहा कि बाबा आज विशेष सारे विश्व में चक्कर लगाने गए। एक तरफ तो बाबा अपने विश्व अधिकारी होमनहार विश्व राज्य पर करने वाले, विश्व पर राज्य करने वाले बच्चों को देखने, और दूसरी तरफ विश्व को परिवर्तित कराने वाले जो भी साधन या व्यक्ति हैं उनको देखने गए थे। बाबा ने कहा, एक तरफ साइंस अपना पूरे जोर से काम कर रही है, दूसरी तरफ प्रकृति भी खेल कर रही है, और तीसरी तरफ दुनिया के बड़ी बड़ी अथॉरिटीज वो चिंता में और सोच रहे हैं कि इस विश्व का क्या होगा, और चौथी तरफ बाबा के वो बच्चे जो नई दुनिया के अधिकारी राज्य करने वाले हैं उनकी स्थिति, पुरुषार्थ और उनके स्वरूप को बाबा देख रहे थे। तो लेकिन बाबा के चेहरे से दो प्रकार के एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे, एक तरफ मुस्कुराहट, दूसरी तरफ बाबा ऐसे सोच, ये सोच तो नहीं कहेंगे, बाबा बच्चों के बारे में ऐसा सोच रहे थे कि बच्चे कब संपन्न होंगे। तो बाबा ऐसे देख रहे थे। फिर बाबा ने कहा, अच्छा आज तो बच्चों को वतन में बुलाया है। तो बाबा ने कहा, आओ बच्चे। तो बहुत से भाई बहने बाबा के सामने इमर्ज हुए, बाबा सबको दृष्टि देते हुए वरदान दे रहे थे। तो बाबा ने कहा, सब बच्चों को कहा, बच्चे आज बाबा विशेष सारे विश्व का चक्कर लगाने गए थे। तो बाबा ने बच्चों से पूछा, क्या आप भी चलेंगे? तो सब बच्चे कहते हैं, हाँ बाबा हम आपके साथ चलेंगे। तो बाबा ने कहा, अच्छा चलो बाबा के साथ। तो जैसे बाबा आगे चलते हैं बच्चे भी साथ में चलते हैं, तो पहले दूर से एक देखते हैं, बहुत दूर से इतना सुंदर वर्ल्ड का ग्लोब दिखाई दे रहा था, और वहां तक पहुंचना था, और वर्ल्ड के ग्लोब के ऊपर एक बहुत बड़ा लाइट का टावर था जहां चारों तरफ लाइट, और उस लाइट के पास चारों तरफ बहुत रंग बिरंगे चमकते हुए ऐसे फूल मालाएं दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा, वहां तक सबको पहुंचना है। तो जैसे वहां पहुंचने के लिए जाते हैं तो पहले तो एक रास्ता ऐसा आता है, वो रास्ता ऐसा होता है, थोड़ा डार्क भी होता है, कंजस्टेड भी लगता है, लेकिन उसके बीच में एक गेट होता है और गेट से क्रॉस करना होता है। तो बाबा ने कहा इस गेट से क्रॉस करेंगे सब, लेकिन जैसे गेट से क्रॉस करने लगते हैं वो गेट खुलता ही नहीं है। तो उस पर लिखा हुआ था निमित और निर्माण। तो जैसे वो निमित और निर्माण की स्थिति में रहते थे वो गेट खुलता था। फिर आगे बढ़ते गए तो आगे बढ़ते हुए क्या देखते थे, दूसरा ऐसा ट्रांसपेरेंट गेट था। गेट लगता था खुला हुआ है लेकिन वो बंद था और उसकी कांच से अलग अलग प्रकार की किरणें निकल रही थी। उस पे लिखा हुआ था ज्वालामुखी और स्नेही स्वरूप। फिर जब उसको देखते हैं जैसे ज्वालामुखी स्वरूप में टिकते और स्नेही स्वरूप में टिकते, धीरे धीरे वो लाइट की किरणें इतना सुंदर वो गेट बनता जा रहा था और ऑटोमेटिकली खुलता था और उसके द्वारा क्रॉस करते थे। फिर तीसरे गेट की ओर गए तो वहां पर लिखा हुआ था स्वराज्य अधिकारी, और स्वराज्य अधिकारी के साथ तीन बातें लिखी हुई थी कि एक था कि परमात्मा मेरा साथी, और दूसरा उसके अंदर एक बिंदी थी और उस बिंदी के अंदर इतनी लाइट थी और उस बिंदी को टच करना होता था। कई बच्चे जैसे उसको बिंदी को टच करते थे तो कभी वो बिंदी गुम हो जाती थी, कभी वो बिंदी इधर से उधर हो जाती थी। जैसे कोई लॉक खोलते है ना, लॉक खोलते टाइम कोई इधर से इधर हो जाता है तो वो बिंदी इधर से उधर हो जाती थी। तो बाबा ने कहा ये बिंदी जो है ये आत्मा की ओरिजिनल स्टेज है। कई बच्चे कभी उस स्वरूप के अंदर टिकते हैं तो बाबा को अपने साथ साथी के रूप में देखते हैं। जब उस स्वरूप में नहीं टिकते हैं तो फिर साथी भी उनको दूर लगता है, फिर पुकारते हैं बाबा मदद करो, बाबा मदद करो। फिर आगे जैसे जाते थे वहां पर गेट के ऊपर लिखा हुआ था सर्वशक्ति संपन्न। तो उसमें बाबा ने कहा चलो, तो बाबा ने कहा बाबा ने बच्चों को सर्व शक्तियां दी हैं, लेकिन उस स्वरूप में कभी बच्चे टिकते हैं कभी नहीं टिकते हैं। फिर जैसे उस स्वरूप में टिकते हैं तो वो स्वरूप सामने गेट खुल जाता था, लेकिन यहां तक नहीं था। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, ये जो वर्ल्ड ग्लोब है इसके पास जाना है, सबको टच करना है, लेकिन वहां पहुंचना भी बच्चों के सामने जरा डिफिकल्ट लग रहा था। फिर बाबा ने कहा अच्छा देखो, तो जैसे देखने लगते थे एक तरफ बहुत कुछ अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां दिखाई दे रही थी, दूसरे तरफ कहीं पर घंटे बजते हुए दिखाई दे रहे थे, तीसरे तरफ कोई भयानक रूप दिखाई देता था। उसको देख करके बच्चे इतने डरने लगे, बाबा ये सब क्या हो रहा है। बाबा ने कहा बच्चों को पता है कि भयानक परिस्थितियां अपना रूप धारण कर रही हैं और ये सृष्टि के परिवर्तन के लक्षण जो हैं वो बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, और लेकिन बच्चों को क्या करना है कि एक तो ज्वाला स्वरूप और शीतलता रूप की किरणें फैलानी है ताकि विश्व के अंदर प्रकृति भी शांत हो और मनुष्य आत्मा भी अपने अंदर शांति की तृप्ति अनुभव करे और तब जाकर के विश्व स्वराज्य अधिकारी बन सकेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चों को अभी बैलेंस रखना कभी कभी कम आता है, कभी कभी तो एक स्वरूप में इतना चले जाते हैं और दूसरे अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान कम देते हैं। तो बाबा इशारा दे रहे थे प्रकृति अपना विकराल रूप धारण कर रही है, लेकिन बच्चों को साइलेंस की शक्ति के द्वारा अपनी सर्व शक्तियों से संपन्न होकर के विश्व को भी ऐसी साकाश की किरणें देनी है, ताकि हमारा जो राज्य है उसके हम अधिकारी बच्चे वहां जा सके। फिर तो जैसे सारा दिखाया तो फिर वर्ल्ड ग्लोब के ऊपर बाबा खड़े हैं और बाबा के साथ सब बच्चे फरिश्ते रूप में खड़े थे। बाबा ने कहा बच्चे देखो कि अब विश्व पर राज्य करने के लिए कौन अधिकारी है, यही मेरे स्वराज्य अधिकारी है। तो सदा ध्यान रखना है स्वराज्य अधिकारी विश्व के परिवर्तन करने वाले और विश्व को नया बनाने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। इस स्वरूप में टिकते हुए बैलेंस में रखना है शक्तियों का भी, ज्वाला स्वरूप का और अपनी ओरिजिनल स्थिति का भी। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया तो बाबा ने भी सब बच्चों को भोग स्वीकार कराते हुए बाबा ने सब बच्चों को एक छोटा सा कमल पुष्प दिखाया और कहा आज बाबा जो है बच्चों को सौगात दे रहे हैं, लेकिन कमल पुष्प के अंदर बीच का जो था उसमें शिव बाबा, बीच में दो ऐसे पावरफुल फूल दिखाई दे रहे थे, कभी बाबा और मम्मा दिखाई देते हैं लेकिन वो पावरफुल फूल दिखाई दे रहे थे। उसमें लिखा था सर्वशक्तिमान बाप साथी हैं और बाप के ही राइट हैंड हैं। तो बाबा ने कहा जैसे मम्मा और बाबा बाबा के राइट हैंड रहे, तो मेरे बच्चे भी बाप के राइट हैंड बन करके बाप को साथी बना करके कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे और विश्व के अधिकारी बने, ऐसा सबको वरदान दिया। फिर बाबा सबको बहुत दृष्टि भी दे रहे थे। फिर जिनके भोग थे बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए याद प्यार दिया। बाबा ने कहा सबके संकल्प पहुंचे, बाबा ने पहले से ही उनका रिटर्न दे दिया है, कुछ सोचने का नहीं है, बाप साथ है। सबको याद दिया। ओम शिव।